ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सब लोग बोलिए। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। श्री कृष्ण कीर्तन के साथ श्री कृष्ण कथा भी होनी चाहिए। इस कथा को विस्मय कथा कहते हैं। विस्मय यानी आश्चर्यकारक कथा। तो आप सब लोग शायद वृंदावन में कभी ना कभी गए होंगे। तो वृंदावन में जहाँ जहाँ नंद बाबा का घर था वहाँ वहाँ उनकी एक बैठक भी थी, उसको कहते हैं 84 खंबा। वहाँ राज शाम को भगवान कृष्ण लौट के आने के बाद में वो मीटिंग किया करते थे। आज क्या हुआ, कन्हैया ने क्या किया, आज क्या चमत्कार किया। तो उस समय अभी अभी भगवान ने गिरिराज को 7 उठाया था और अभी अभी उन्होंने नीचे रखा था उसको। तो उसके बाद जो मीटिंग हुई उसके बाद में सब लोग विस्मयचकित थे, आश्चर्यचकित थे। अरे कन्हैया ने गिरिराज को उठाया, इतने बड़े गिरिराज को उठाया, वही अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली से उठाया, वो भी 7 दिन 7 रात उठाया। तो कुछ ग्वाल बाल गोपाल कहने लगे नंद बाबा को कि वो तो तुम्हारा बेटा बहुत देवता है, कोई बहुत महान देवता होगा कोई। तो किसी ने बोला नहीं नहीं, कोई सिद्ध बाबा होगा, सिद्धि प्राप्त करके तपस्या करके दिव्य बल प्राप्त करके आया होगा। नहीं नहीं, कोई बोलते हैं कि नहीं ऋषि होगा ऋषि। तो नंद बाबा पेट पकड़ पकड़ के हंसते हैं। देवता लोग ऐसे होते हैं क्या, थोड़ा सा भूख लगी और नहीं मिला मक्खन तो क्या क्या नहीं करता है। हाँ, गोपियों के घर में जाकर उनको बालकों को जो बालक सोए हैं पलने में उनको चिमटा निकालता है। हाँ, उनके कान में पानी डालता है और नहीं तो और भी गुस्सा आया तो उसके घर में पेशाब कर देता है। ये कोई देवता के लक्षण है। वो कहते नहीं ऋषि होगा ऋषि। ऋषि कितने संयमित होते हैं, उनका मन इंद्रिया सब नियंत्रण में होते हैं, इतने शांत स्वभाव के होते हैं। ये तो इतना चंचल है, कब क्या करेगा कब क्या बोलेगा कोई भरोसा नहीं इसका। फिर कहते हैं कि आकाश में जब गड़गड़ाहट होती है ना बादलों की तो ये मैया बोल के मेरे गोद में भाग में आता है। इतना सा आवाज आने से भय होता है उसको, तो कैसा देवता है ये। लेकिन फिर भी बातें चल रही थी कि अद्भुत व्यक्ति बालक है तुम्हारा, जो भी है आप मान रहे हो नहीं मान रहे हो लेकिन निश्चित रूप से आपका बालक अद्भुत है। कोई मोबाइल चालू है क्या उधर, बंद करना होगा ये मोबाइल नहीं है। हरे कृष्णा, भगवान की कथा में कई बाधाएं होती हैं, उसके पहले बंद करना पड़ता है फिर भगवान की कथा अच्छी तरह से ग्रहण कर सकते हैं। तो फिर नंद बाबा बोलते बोलते सब लोग इतने भाव में आ जाते कि हमारा कन्हैया बहुत अद्भुत है विशेष है। तो नंद बाबा कहते हाँ तो गर्ग मुनि ने कहा ही था कि एक दिन गिरिराज को उठाएगा वो, तभी कहा था उसका नाम गिरधारी पड़ेगा। सबके कान ऐसे खड़े हो गए, क्या गर्ग मुनि कब आए थे यहाँ पर? अरे मुझे नहीं बोलना चाहिए था लेकिन बोल दिया मैंने, ऐसे नंद बाबा सोच रहे हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब कृष्ण भगवान का बलराम जी का नामकरण विधि हुआ तो बड़े गुप्त रूप में हुआ था वो, क्योंकि कंस का बड़ा भय था, इन बालकों पर उनका नजर था कि कहाँ ये बालक, उनको मारना था उनको। तो वसुदेव ने सब समझा बुझा के गर्ग मुनि अपने कुलगुरु को भेजा था कि आपको जाना है, इनका नामकरण विधि करना है, लेकिन कोई गाजा वाजा नहीं करना है उसका, कोई अनाउंसमेंट नहीं करना है, दौंडी नहीं पिटना है उसका, एकदम गुप्त रूप में करना है। तो जब गर्ग मुनि आए और उन्होंने कहा था कि गौशाला में नामकरण विधि करेंगे और किसी को नहीं बुलाएंगे, रोहिणी माता, यशोदा माता, मैं और दो बालक बस, इसके अलावा कोई नहीं, अब गाय रहेंगे वहाँ पर, वो किसी को नहीं बताएंगे। ऐसे गुप्त रूप में नामकरण विधि हुआ था। उसमें गर्ग मुनि ने बहुत समझाया था उनको कि इसका नाम ये होगा वो होगा, पिछले जन्म में ये राम थे, उसके पहले जब जन्म नरसिंह भगवान थे, ऐसे बहुत कुछ बताया। और आगे जाकर ये गिरिराज पर्वत को उठाएंगे, तब थोड़ा सा रजिस्टर नहीं हुआ वो बात के, इतना सा बालक क्या गिरिराज उठाएगा, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन अभी उनको याद आया कि गर्ग मुनि ने कहा था, लेकिन सारी गुप्त बात ऐसे बोलते बोलते खुल गई। तो अचानक जो है ना मूड, अभी जो आपका कैसा मूड है, सब लोग शांत सुन रहे हैं, अचानक मूड बदली हो गया, कुछ लोग खड़े हो गए, नंदा तुमको हमारी बिरादरी से हटा देना चाहिए कि तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें बिरादरी की करते हो, प्रेम की बातें करते हो, दोस्ती की बातें करते हो, और हमसे अपने बालकों का नामकरण विधि तुमने छुपा के रखा। आज हम डिक्लेयर करते हैं सबके साथ मिलकर कि आपको इस गोपालों की बिरादरी से बरी किया जाए। तो मामला गंभीर हो गया ना, सडनली भगवान के अद्भुत होने के बारे में चर्चा हो रही थी, अभी बोल रहे नंद बाबा को निकाल दो। तो उतने में वृषभानु महाराज खड़े हो गए। आप जानते हैं वृषभानु महाराज कौन है? राधा रानी के पिताजी हैं। इनकी और नंद बाबा की बड़ी गहरी मैत्री है, फास्ट फ्रेंड्स। हाँ, इतने फास्ट फ्रेंड्स थे कि उन्होंने जब उनका दोनों को संतान नहीं हुई थी, बहुत समय तक 80-80 उम्र हो गई उनकी, लेकिन कोई बालक नहीं हुआ उनको। तो उन्होंने तय किया मिलकर कि हम ना जमुना जी के किनारे जाएंगे, जमुना जी के किनारे घर बसाएंगे, फिर जमुना जी की कृपा से हमको बालक हो सकता है। और हुआ भी वैसे ही, जैसे वहाँ पहुँचे तो कृष्ण बलराम का प्राप्ति हुई और वृषभानु महाराज को राधा रानी का प्राप्ति हुई, और फिर आतंक मच गया रोज का राक्षसों का। तो फिर दोनों ने मीटिंग किया और कहा कि अभी तो जमुना जी का किनारा सुरक्षित नहीं है, अभी हमको दोबारा घर लौट जाना पड़ेगा। तो फिर दोबारा दोनों शिफ्ट हो गए। इतनी गहरी उनकी मैत्री थी, ऐसे कहते हैं कि वृषभानु महाराज बहुत धनी और बहुत साम्राज्य था उनका, तो अपने दोस्त नंद महाराज को प्रेम से उन्होंने अपने राज्य का कोई हिस्सा दे दिया था और राज तिलक भी किया था उनका। तो ये वृषभानु महाराज अपने जिगरी दोस्त का जो अपमान हो रहा है समझो, या तो निकाला जा रहा है, तो उनको रहा नहीं गया, वो खड़े हो गए, बोला कि ऐसा नहीं है, आप गलत मत समझना, उस समय पर स्थिति बहुत बिकट थी, अभी आप समझ नहीं सकते उसको, उस समय कितनी हालत नाजुक थी कि हमें वो सबके साथ में वो उत्सव करना मुमकिन नहीं था। ऐसे वो समझा रहे हैं, मतलब वातावरण को थोड़ा ठंडा करने का प्रयास कर रहे हैं, जो गर्म हो जा रहा है उसको ठंडा कर रहे हैं। तो कुछ लोग जो बोल रहे थे उनको निकाल दो, वो और गर्म हो गए, उन्होंने कहा ये नंद के साथ वृषभानु को भी निकाल दो, अगर ये इनसे मिला हुआ है दोनों को बरी कर दो। तो जब वृषभानु महाराज को, अभी हमारी आज की असली कथा शुरू हो रही है, हाँ सब लोग ध्यान से सुनिए, जब वृषभानु महाराज को निकालने की बात हुई, बंद करो,
इसको स्विच ऑफ कर दो, फोन भी नहीं है। लगा दो वापस।
तो जब वृषभानु महाराज को बरी करने की बात हुई तो एक तीसरा ग्रुप खड़ा हो गया, उन्होंने कहा अरे इनको मत निकालना, इनकी कृपा से ही आज तक बरसानी नंदगांव में कोई राक्षस नहीं आया। आपने कभी सुना है क्या कि बरसाना में नंदगांव में राक्षस आया, भगवान ने उसको मारा? जितने भी राक्षस आए वो वृंदावन, तालवन, मधुवन, कुमुदवन, ऐसे दूर दूर आए हैं, जब वो गौचारण करने के लिए घर छोड़ कर जाते थे तो वहां जाकर वो राक्षस आके उनको मारने का प्रयास करते थे और उनका वध होता था वहां पर। लेकिन कहीं भी इतिहास में आज तक ऐसा वर्णन नहीं आया कि नंदगांव में राक्षस आया और वहां भगवान ने उसको मारा, या राधा रानी के घर में, गांव में, बरसाना में राक्षस आया और मारा। तो सब लोग के कान खड़े हो गए, क्या हो गया, क्या हो, कैसे 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 नहीं आए। तो वो तीसरा ग्रुप जो है वो एक कहानी बताते हैं जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, सब लोग ध्यान से सुनिए। वो कहते हैं जैसे ही नंद बाबा और विश्वानु महाराज शिफ्ट हो गए तो अगले दिन जब राक्षस आया कंस की ओर, तो उसको नंद गोकुल और रावल जहाँ पर वो पहले थे नंद बाबा, वो खाली नजर आया, क्योंकि सब लोग शिफ्ट हो गए ना। आपको समझ में आया, जैसे आज के दिन राक्षस भेजा तो गोकुल भेजा और उसकी मृत्यु हो गई, और नेक्स्ट डे वो लोग शिफ्ट हो गए वहाँ से, तो अगला दिन जब राक्षस आया तो वो गोकुल में आया, लिखा सब कुछ खाली है, पूरा सिटी खाली हो गया है। रावल में गया जहाँ विश्वानु महाराज थे, वो भी सिटी खाली है पूरा, रमन रीति खाली है, सब खाली है। तो वापस गया वो, बोला महाराज आपने रॉन्ग एड्रेस दिया मुझे, उधर कोई है ही नहीं, इसको मारे हम। तो कंस बड़े चकित हो गए, बोले ऐसा कैसे हो गया, बोले कहीं गए होंगे आगे। तो उसने दो लोगों को भेजा जो दो बच्चों के साथ, चार, हाउ और बुलाओ, उसको हवा भी कहते हैं, वो बड़े विशाल ऐसे राक्षस थे, सेनापति थे कंस के। वो नंदगांव पहुंचे ढूंढते ढूंढते, उनको पता था कि नंदगांव से आए थे पहले, तो नंदगांव पहुंच गए, तो वहां कृष्ण बलराम खेल रहे थे, सोचा कि अभी पकड़ के उनको मार दिया जाए। तो जैसे उसको छूते ना नंदगांव में, तो चारों पत्थर हो जाते, तो वो भी लौट के नहीं आए। निकालते हैं रिटर्न टिकट, लेकिन आता कोई नहीं वापस, वन वे टिकट सबका। तो पत्थर हो गए, तो यशोदा मैया ने कृष्ण भगवान को, बलराम जी को डराने के लिए उसका उपयोग किया, आगे जाकर देखो मस्ती मत करना वो आ जाएगा, सही वो डरा देते उनको। अभी भी, अभी नहीं है वो, पहले था, बहुत बड़े विशाल पत्थर के ऐसे विकराल अकराल विकराल मूर्तियां थी वहां पर, जिसके नाम से वो डराती थी यशोदा मैया। तो फिर कंस को बड़ा आश्चर्य हो गया, अरे क्या चमत्कार हो रहा है, ये इधर भी नहीं है, जो मेरे सेनापति गए वो भी लौट के नहीं आए। तो कंस बोला मैं खुद जाता हूँ अभी, उसको ढूंढ के निकालता हूँ। तो कंस मथुरा से आया, उसने वृंदावन पार किया, उसने गोवर्धन पार किया, फिर वो बरसाने की सीमा में आया, और जैसे ही बरसाने की सीमा में आया वो स्त्री बन गया। मैं कथा कर रहा हूँ समझो अभी, हाँ धोती कुर्ता पहन के बैठा हूँ, अचानक मुझे समझ में आया कि मैं स्त्री हो गया हूँ, तो कितना संकोच होगा मुझे आपके सामने, मेरा शरीर बदलते हुए आप सबको समझ में आएगा कि प्रभु जी स्त्री बन गए, तो कितना एम्बरेसमेंट होगा उसमें। और तो वो तो मैं तो साधारण जीव हूँ, वो तो कंस महाराज थे, वो दिग्विजयी कंस महाराज, जिसने कोलापीड़ हाथी को ना आसमान में इतना ऊंचा फेंक दिया था जितना कृष्ण भी ने नहीं फेंका था, तृणावर्त को तो 1000 योजन आकाश में ले गए थे वो उठाकर, और चारों दिशा में विजय प्राप्त किया था। जितने भी राक्षस जानते हैं ना, बकासुर, अकागासुर, पुतना, शकटासुर, जितने भी राक्षस आए सबको परास्त करके अपना सेवक बना के रखा था उसने। और कुछ लोग इतना पराक्रम देख के ऐसे ही आके हाथ मिलाया कि भाई युद्ध करने की जरूरत नहीं, वी आर फ्रेंड्स। जरासंध ने क्या किया, जैसे ही जरासंध का हाथी कोलापीड़ सांकली तोड़कर उसके तंबू में गया कंस के, तो सारे योद्धा भाग गए जो कुश्ती की प्रैक्टिस कर रहे थे कंस के साथ, वो सब भाग गए, चाणूर मुष्टिक सब भाग गए। तो कंस अकेला खड़ा हो गया, जैसे हाथी आया उसको पकड़ा सुल्ड से, गोल गोल घुमाया और फेंक दिया उसको। तो कहाँ गिरा वो, वापस जरासंध के तंबू में गया के गिरा। तो जरासंध ने पूछा अरे ये चमत्कार किसने किया, तो लोगों ने बताया कि कंस नाम का वीर आया है, उसने आपके हाथी को उठाकर फेंक दिया है। वो क्यों आया यहाँ पर, वो दिग्विजय करने के लिए आया है। तो बोला दिग्विजय करने की हमारे को युद्ध करने की जरूरत नहीं है, तुरंत अपने दो कन्याओं को लेके आया अस्थि और प्राप्ति, और उसका कंस के साथ में विवाह कर दिया उसने। मतलब पहले जाके दो लड़कियों को लेकर ही गया, वो दहेज लेकर ही गया और सीधा विवाह कर दिया कंस के साथ। तो कुछ लोगों ने उसको पराक्रम को देखकर ऐसे ही सुलह कर दी थी, युद्ध करने की जरूरत नहीं है, मैत्री कर लो। वो कंस महाराज दिग्विजयी चारों दिशाओं में विजय प्राप्त करने वाला कन्या हो गया बरसाना में आते ही। तो बड़ा संकोच हो गया उसको, वो सब गोपियों के पास जा जा के प्रार्थना करने लगा, अरे कुछ भी करो, मैं ऐसे मुंह लेके कैसे वापस जाऊंगा, मेरे सब लोग क्या कहेंगे मथुरा में, मैं उनका मथुराधीश हूँ, मेरी अवस्था देखकर क्या मेरी इज्जत होगी, स्थिति होगी, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं, कुछ करो, तो गोपिया ताली पीटती है, बढ़िया हो गया, बढ़िया, रोज राक्षस को भेजते हो यहाँ पर, आतंक मचाते हो, अच्छा हो गया, जो हो गया अच्छा हो गया। तो गिड़गिड़ाते हैं बहुत, तो गोपिया कहते आपको ना हमारे गौशाला में गोबर निकालना पड़ेगा, गोमूत्र गोबर निकाल के उसके कंडे बनाने पड़ेंगे, ब्रज रज को मिलाकर अच्छे कंडे बनाने पड़ेंगे, उसको सुखाने पड़ेंगे, सूखने के बाद इकट्ठा करने पड़ेंगे, टोकरी में जमा करने पड़ेंगे, सर पे धारण करने पड़ेंगे, गौशाला में सजाने पड़ेंगे उसको, फिर गौशाला साफ करनी पड़ेगी। आप जानते हैं 6 महीने गोपियों ने कंस से कंडे लिपवाए, और कंस भाई कंस नहीं रहा ना, उसका नाम क्या था, कंसनी गोपी, वो कंसनी गोपी हो गया था, और 6 महीने तक उसने सारे काम किए, रोते हुए रोते हुए रोते हुए किए, क्या करे अभी कोई उपाय नहीं है। तो उसके बाद में एक बार वृषभानु महाराज छोटी राधा रानी को लेकर आए, तो कंस जो है वो कंसनी गोपी बना हुआ, वो वृषभानु महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम किया उसने, महाराज कुछ करो, हमारा हमारी स्थिति इतनी विकट और इतनी दयनीय है, तो कुछ करो आप। तो श्री जी हमारी राधा रानी ने से उंगली उठाई, बोले दोबारा यहाँ आओगे तो परमानेंट लड़की बने के रहोगे, अभी ये मेरा कुंड है किशोरी कुंड, यहाँ पर छलांग लगाओ और तुमको पूरा पुरुष शरीर दोबारा प्राप्त हो जाएगा, लेकिन दोबारा यहाँ पर कभी आओगे तो याद रखना। तो कंस जिस वस्त्र में थे उसने किशोरी कुंड में छलांग लगाई, और जैसे छलांग लगाई पुनः पुरुष हो गया वो, और गीले कपड़े से वहां से लेकर मथुरा तक भागा वो। क्यों भागा? अगर कहीं माइंड चेंज हो गया तो मथुरा तक भागा, और उसके बाद में कभी उसने राक्षस भेजा मत बरसाने के लिए, बाहर भेजा सब जगह पर, लेकिन बरसाना नंदगांव इसमें कभी राक्षस नहीं भेजा। तो ये कथा तीसरे ग्रुप ने सुनाई कि इनकी बेटी जो है ना ये महाप्रतापी है, इस महाप्रतापी कन्या राधा रानी की वजह से हम सब लोग यहाँ पर आराम से आनंद ले रहे हैं, कोई राक्षस का आतंक यहाँ पर नहीं हो रहा है, इसलिए उनको निकालने की बात मत करो और इनकी बात भी मानो, कहीं ये नाराज हो जाएंगे तो यहाँ की सुरक्षा जो है ना वो सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी आपकी। तो सब लोग शांत हो गए, सब लोगों ने गले मिलाए एक दूसरे से और चले गए, उसको विस्मय कथा कहते हैं। हाँ, इसमें राधा रानी की महिमा जो है ना, कृष्ण भगवान तो कंस के द्वारा भेजे गए राक्षसों के साथ युद्ध करते थे, उसको मुक्का मारते थे, उसको ख़त्म करते थे, बहुत मेहनत करते थे उसके लिए, राधा रानी की उंगली उठाई बस, ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं किया, उंगली उठाई एक डायलॉग बोला बस, उसके बाद में कंस की हिम्मत नहीं वापस आने की। तो ऐसे श्री कृष्ण तो भगवान तो है, ये सब जानते हैं, परमेश्वर है वो, परम पुरुषोत्तम है, लीला पुरुषोत्तम है, सब कुछ है, लेकिन उनकी शक्ति जो है ना वो श्रीमती राधा रानी है। सब लोग बैठ जाइए, आप इधर उधर मत देखिए, ज़्यादा कथा नहीं करूँगा, 10 मिनट के लिए कथा करूँगा बस। तो जब भगवान ने गिरिराज को उठा के रखा था ना, तो उसके अंदर बहुत लीला हो गई। मैया कहती है कि अरे बेचारा, मैंने 100-100 स्पेशल गायों का दूध उसको पिलाया है, इसलिए आज काम आया ना, देखो इतना बड़ा गोवर्धन उठा के रखा है। और बोल रहे बेटा हाथ तो बदले करना, कितना देर से एक हाथ में पकड़ के रखा है, चेंज तो करो, मैं इसका मालिश कर दूँ थोड़ा सा, थोड़ा दूध भी पी ले, सुबह से दूध नहीं पिया तूने आज। तो मैया को तो कन्विंस है, मैया वो सोच रही है कि मेरे इतने मेहनत करके जो मैंने स्पेशल दूध बनाया, जिसको कमल की खुशबू आती थी, पुष्पगंधा कहते हैं उसको, वो दूध का सेवन करने से आज ये दिन हमको देखने मिल रहा है कि इंद्र का आतंक हुआ लेकिन फिर भी बालक ने हमको बचाया। तो ग्वाल बाल अपने गाल गाल में हंस रहे हैं, बोलते मैया को पता नहीं है अच्छा असली कारण क्या है, ये तो हम ही जानते हैं, हमने उसको रोज कुश्ती खिला खिला कर जो हराया था ना, वो आज आप काम आया, हमने इतना ट्रेनिंग दिया उसको, हर बार उसको चीतपट करा दिया, मट्टी में लोटपोट करा दिया उसको, वो जो हार हार के सीखा ना वो आज काम आ रहा है। तो ग्वालबाल जब ये बोल रहे हैं तो गोपियां वहां पर हंस रही हैं, अरे इनको तो असली कथा पता ही नहीं है, अपने ही धुन में घूम रहे सब लोग, मैया कुछ सोच रही है, ग्वाल बाल कुछ सोच रहे हैं। तो ये गोपियों को हंसते हुए ग्वाल बालों ने देखा, क्योंकि वो जब गोपी ग्वाल बाल बोल रहे थे ना बड़े विश्वास के साथ, तभी गोपियां ऐसे ऐसे मान गुर्दा हिला रही थी, नहीं नहीं मतलब दे आर सेइंग दैट वी डोंट एग्री विद दिस। तो वो गए ग्वाल बाल, अब ये सब कुछ कहाँ हो रहा है, गोवर्धन के नीचे हो रहा है, भगवान ऐसे खड़े हैं ऐसे मुरली लेकर और अंदर डिस्कशन हो रहा है। हाँ कैसा सिचुएशन, देखो इतनी वर्षा हो रही है, जान की जान का खतरा है, लेकिन क्या हो रहा है, भगवान के साथ में कोई जान का खतरा नहीं होता है। सब लोग आनंद से खड़े, घनघोर वर्षा हो रही है, धुआंधार मूसलधार कहते हैं उसको। उसको क्यों कहते हैं मूसलधार? आपने देखा है मूसल कैसा होता है, वो गांव में देखो कूटते मसाले को, उसको कहते हैं मूसल। एक एक बूंद वो मूसल के समान थी, इसलिए उसको मूसलधार वर्षा कहते हैं। ऐसी वर्षा हो रही है, पूरे गांव को नष्ट करने के लिए वर्षा हो रही है, लेकिन अंदर तो आनंद हो रहा है। तो ये ग्वाल बाल गोपी के पास गए, बोले क्यों हंस रहे हो आप? बोले आप लोगों को पता नहीं है, आप लोग ऐसे बहका रहे हो लोगों को कि हमने कुश्ती सिखाया, ऐसे किया वैसे किया। तो फिर क्या कारण है उसका, क्यों उठा कर रखा है उसने? वो कहते हैं कि राधा रानी उसको तिरछी नज़रों से यहाँ से देख रही है, और वो भी तिरछी नज़रों से उनको देख रहे हैं। वो नज़रों का जो मिलन हो रहा है ना, उसमें शक्ति आ रही है, और उस शक्ति से वो उठा पा रहा है गोवर्धन। तो उसमें कौन सी शक्ति है? तब ये कैसे प्रूव करेंगे आप, ऐसे गोपियों को पूछ रहे हैं? बोला अभी तो कैसे प्रूव करेंगे, अभी तो वो पकड़ के रखे ना, तो जब ये लीला समाप्त होगी ना तब आपको प्रूव करेंगे। तो फिर 7 दिन भगवान ने उठा के रखा, 7 रात तक। अरे इंद्र का उधर वाटर टैंक खाली हो गया, इसलिए वो 7 दिन 7 रात में बंद करना पड़ा। अगर इंद्र 700 दिन और 700 रात वर्षा करता ना, तो भी उठा के रखते उसको आराम से एकदम। ऐसा नहीं कि पसीना आ रहा है, हाथ में से पसीना आ रहा है, उसको भी मालिश किया जा रहा है, वो भी ऐसे हाँफ रहे हैं हाँफ रहे हैं, ऐसा नहीं, आराम से खड़े हैं। पीछे मुरली भी निकालते हैं तो सब बोलते हैं अरे मुरली मत बजाना, कि जब मुरली बजती है तो पत्थर पिघल जाते हैं, अगर गोवर्धन पिघल गए तो मत बजाना मत बजाना, ऐसे सब लोग बोल रहे हैं। फिर भी वो बजाने लगते हैं तो सब बड़े बड़े ग्वालबाज है ना, बुजुर्ग जैसे नंद बाबा के फ्रेंड्स है ना, वो डंडा लगाते हैं, समझो अभी अगर गोवर्धन थर्रा गया मुरली की आवाज़ सुन के तो हम पकड़ के रखेंगे उसको, गिरने नहीं देंगे। तो भगवान क्या करते हैं, मुरली बजाते हैं, वो सब लोग पकड़ते हैं ऐसे। वो एक चित्रपट है, ऐसा बड़ा पेंटिंग है, सब बड़े ग्वालबाज ऐसे डंडा लगे खड़े हैं मानो वही पकड़ रहे गोवर्धन को। तो भगवान क्या करते हैं, उनका वहम दूर करने के लिए गिरिराज को थोड़ा टिल्ट कर देते हैं, सब लोग ऐसे ऐसे गिरने लगते हैं। फिर होते हैं नहीं नहीं हम लोग नहीं पकड़ रहे, भगवान ही पकड़ रहे। तो फिर गिरिराज लीला समाप्त होती है, पानी खड़क सब समाप्त हो जाता है, इंद्र भाग भाग के आते हैं। एनीवेज वो लंबी कथा है। तो जब 2 दिन के बाद में भगवान देखने आते हैं कितना डैमेज हो गया वृंदावन में पानी की वजह से, तो उस समय ग्वाल बाल भी आते हैं वहाँ पर, वो सखियाँ भी वहाँ से आती। तो ग्वाल बालों को याद आता है कि आपने कहा था ना कि मेरी तिरछी चितवन, मतलब राधा रानी के तिरछी चितवन के वजह से ये इनको शक्ति प्राप्त हो रही है, इसलिए उन्होंने गिरिराज को उठा के रखा था। अभी दिखाओ उसका प्रूफ दिखाओ। तो राधा रानी को लेके आए सब लोग, सखियाँ लेके आई और गिरिराज के पास लेके गई, गोवर्धन के पास। बोले अभी देखो आप। तो राधा रानी अपनी नज़रों से गिरिराज का तल देखती है, जैसे गिरिराज जमीन पर ऐसे देखती है, फिर नज़र को उठाती है, वैसे गिरिराज आकाश में जाता है, फिर नज़र को उसे ऊपर रखती है तो पूरा आकाश में। वो कृष्ण के पास कैसा था, कृष्णी कृष्ण की हाइट थी, वहीं पर था ना वो, ऐसे थोड़ा सा 1-6 इंच ऊपर था, लेकिन इनकी नज़रों के बल से आकाश में गिरिराज खड़े हैं, सब लोग देख रहे हैं उसको। तो बहुत देर वहीं देखते रहते हैं, तो गिरिराज जी वहीं रहते हैं। बाद में सखियाँ पूछते हैं अभी रख दें उसको नीचे हाँ कहते हैं, फिर वो नज़र झुकाती है तो गिरिराज जो है वो वापस ज़मीन पर आ जाते हैं। तो सबके सामने प्रूफ हो जाता है कि जो बाजुओं में कृष्ण के बल है वो राधा रानी की प्रेम भरी चितवन की वजह से है। प्रेम में जो शक्ति है वो बाकी सब चीज़ में नहीं होती है। सबसे बड़ा क्या हम कहते हैं, सबसे बड़ी प्रेम सगाई, सबसे बड़ा जो है ना प्रेम है। दुनिया में प्रेम है तो सब कुछ है, अगर प्रेम नहीं है तो सब कुछ बेकार है। हमारा धन, हमारा दौलत, हमारा परिवार, हमारा बिजनेस, हमारी प्रॉपर्टी, जितना भी हमने जमा करके रखा है वो प्रेम के बिना सब बेकार है। तो भगवान यही बताते कि प्रेम होना चाहिए, और सारी वृंदावन की लीलाओं की वजह से भगवान यही दिखाते हैं कि प्रेम सर्वोत्तम है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी मुझे ऐसी प्रेरणा हो रही है क्योंकि हमारे लोहाना जी के कन्या का अभी मोहाना जी के कन्या का अभी विवाह होने जा रहा है, तो मुझे कृष्ण के विवाह की कथा याद आ रही है, जो आपने शायद सुनी नहीं होगी, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा सुनने में। आपने क्या सुना है कृष्ण के कितने विवाह हुए? एक, दो, दस, पंद्रह, इक्कीस, इक्यावन, 101, 1000, 2000, 16000, 16108। लेकिन मैं आपको आज ऐसे विवाह की कथा बताने वाला हूं जिसने भगवान ने एक साथ 3 करोड़ कन्याओं के साथ विवाह किया, वो उसकी कथा गर्ग संहिता में आती है। वो कथा ऐसे कि भगवान उस समय ब्रज में लीला कर रहे हैं, छोटे से बालक बनकर डोल रहे हैं, खेल रहे हैं। तो उधर एक सिंधु, अभी जो है ना सिंधु देश, जहाँ पर अब पाकिस्तान में है वो सिंधु देश, वहाँ पर तो भारत वर्ष था ना पूरा पूरा, इस ग्रेटर इंडिया था उस समय। तो सिंधु नरेश था एक राजा बिमल, बड़ा भक्त था भगवान का वो, उसको बहुत देर तक संतान ही नहीं हुई। तो उसने एक बार नारद मुनि उसके पास आए तो उन्होंने उनको पूछा कि मुझे क्यों संतान नहीं हो रही है, इतना राज्य है, धर्म है, पत्नियां हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन संतान नहीं तो आगे कौन चलाएगा उसको। तो वो मुनि जी ध्यान में बैठते हैं और देखते हैं इसके भविष्य में क्या है, है ना। आजकल तो कुंडली देखकर गणित करते हैं, पुराने जमाने में तो केवल ध्यान करके भूत भविष्य में देखते थे वो। तो मुनि जी ने ध्यान किया, देखा कि अरे इसको तो बेटा तो है नहीं, लेकिन कहा कि आपको बेटा तो है नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपको 3 करोड़ कन्या होने वाली है। तो बोला बाप रे, मैंने क्या पूछा और क्या जवाब मिला, नहीं तो नियति में लिखा है तो उसको डाल नहीं सकते आप। तो अभी जब कन्या होती है, अभी जब आपके वो कन्या है, सबसे पहला टेंशन क्या है आपको, इसका विवाह कैसे, कब होगा, कौन लड़का मिलेगा जो इसके लिए योग्य होगा, है ना। तब तक हमारे वो दिल में शांति नहीं होती जब तक एक लड़का मिलके तय हो गया ना, अभी आप शांत हैं, लेकिन तय नहीं हुआ तो आपको एंग्जाइटी बनी रहती है, ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ। उसके उसको आपको तो एक है, कितने आपको, दो है, तो 3 करोड़ कन्या होगी तो क्या होगा, कितना टेंशन होगा, 3 करोड़ आदमी कहाँ से लाएंगे उसके लिए। तो पहला प्रश्न उसने पूछा कि 3 करोड़ कन्या होगी लेकिन करूँ क्या उनका, मैं कैसे उनका कल्याण करूँ। तो उन्होंने कहा कोई चिंता मत करना, परम भगवान जो है ना वो आपके कन्याओं से विवाह करेंगे। और उनको क्लू देते, क्लू कि वो कैसे होंगे, वो पीताम्बर पहनने वाले होंगे, नीले वर्ण के होंगे, 4 भुजा होंगी उनकी, हाँ मोर पंख धारण करेंगे वो, गल में वनमाला पहनेंगे, ऐसे पूरा सुंदर वर्णन करते उनका। तो ऐसे बालक को आप ढूंढना और जब मिलेंगे आपको तब उनका विवाह कर देना अपने बेटे के साथ। तो राजा ने क्या किया, दूत को भेजा वृंदावन में, थोड़ी थोड़ी बैकग्राउंड दिया था कि वो मथुरा में जन्म लेंगे, फिर देवकी के पास से फिर वृंदावन आएंगे वगैरह वगैरह बताया था उनको, लेकिन उनको लगा ठीक है ढूंढ लेंगे। तो दूत गया उनका मैसेंजर और सब वृंदावन ढूंढना, तो एक जगह उनको खेलते हुए नजर आए कृष्ण बलराम, सब वर्णन ठीक से मिला, लेकिन 4 भुजा के बदले में 2 ही भुजा दिखाई पड़ी। तो फिर अभी सब कुछ मैच हो गया लेकिन वो 4 भुजा वाला मैच नहीं हुआ, तो वो बेचारा दुखी होकर वापस चला गया। उस समय भीष्मदेव युवा अवस्था में थे, देवव्रत, और वो दिग्विजय करने निकले थे। तो जो बिमल राजा के पास दिग्विजय करने के लिए पहुंचे तो वो तो दोस्त हैं उनके, भक्त हैं और मित्र भी हैं, तो युद्ध का कोई सवाल नहीं है उस समय, तो हाथ मिलाना है, भोजन करना है और आगे जाना है, युद्ध करने का नहीं। युद्ध किससे किया जाता है, हम चैलेंज करते हैं, नहीं नहीं हम आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो युद्ध करके उसको हरा के फिर आगे जाना पड़ता है, फिर उसको सेवक बनाएंगे, उससे टैक्स लेंगे, फिर आगे जाएंगे। ये तो बिमल राजा है। तो भीष्मदेव जब पहुंचे तो बिमल राजा को प्रश्न था, तो उन्होंने पूछा कि ये क्या रहस्य है। तो भीष्मदेव कहते हैं कि ये गुप्त बात है, ये किसी को पता नहीं है कि भगवान ने 4 भुजा वाला रूप धारण करके देवकी को दर्शन दिया था, लेकिन देवकी के खास रिक्वेस्ट की वजह से वो 2 भुजा वाले बनकर बालक बनकर गोद में आ गए, उसके पूरे भगवान बनकर प्रकट हो गए थे। लेकिन देवकी ने कहा कि मुझे कंस का भय लग रहा है अभी भी, आप ऐसे मत आना, मुझे डर लग रहा है, आप मेरे गोद में छुप जाना बस। तो तुरंत 2 भुजा वाले बालक बनकर गोद में छुप गए थे और फिर वसुदेव उनको लेकर गोकुल गए थे, आप सब जानते हैं। तो ये रहस्य है, तो 2 भुजा वाला बालक वही है, आप चिंता मत करना। तो फिर दोबारा दूत को भेजते हैं, दोबारा वो खेल रहे हैं अपने ग्वाल बाल, गईये बछड़े सब खेल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सब खा रहे हैं। लेकिन इस वक्त जब कृष्ण भी उनको देखते हैं दूत को, तो समझते हैं इसके पीछे क्या लीला है। तो क्या करते हैं, अपना एक रूप अपने ग्वाल बालों के साथ खेलता हुआ छोड़ देते हैं और दूसरा रूप लेकर बाहर निकलते हैं और दूत को गुप्त रूप में मिलते हैं। दूत अपने कान में बात बताता है कि ऐसे ऐसे मैं मेरे राजा के आज्ञा लेकर आया हूँ, तो भगवान दूसरा रूप में उसके साथ लेकर हवा में उड़ते हैं और सीधे पहुँचते हैं कहाँ पर, सिंधु राज में, सिंधु देश, विमल राजा के पास। वहाँ पर विमल राजा जो है 1008 यज्ञ कर रहे हैं धर्म के कारण के लिए। तो वहाँ से हवाई मार्ग से दूत और कृष्ण भगवान वहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे ही पहुँचते हैं विमल खड़े हो जाते हैं, सारे ऋषि मुनि यज्ञ में जो बैठे हैं ना यज्ञ पुरोहित बनकर वो खड़े हो जाते हैं। तो उनको समझता है कि जो मुनि ने कहा था वो सच है, मुनि का वाक्य कभी झूठ नहीं होता है। वैसे ही कोई डायलॉग नहीं मारते रिझाने के लिए, आपको दक्षिणा लेने के लिए। मुनि जो है वो सब भविष्य भूत जानते हैं। तो समझ में आया कि जो कहा था वही सामने दिख रहे हैं, पूरा वर्णन दिखाई पड़ रहा है, पीताम्बर है, मोर पंख है, मुरली है और वैजयंती माला है गले में, सब कुछ है। तो तुरंत 3 करोड़ कन्याओं को लेके आए, उनका जन्म हो गया था। और उसी यज्ञ मंडप में भगवान ने 3 करोड़ रूप धारण किए और एक एक कन्या के साथ विवाह किया। कैसा होगा सीन, वो कितने एरिया में होगा वो सीन, सोच सकते हैं आप? अरे भगवान क्या नहीं कर सकते हैं। इतने विशाल भूमि पर उन्होंने 3 करोड़ रूप धारण किए और उनके 3 करोड़ कन्याओं के साथ विवाह किया। और वैसे ही विवाह के बाद दहेज वहेज जो भी कुछ हुआ, खाना पीना हुआ, आनंद हुआ, आशीर्वाद लिया ससुर जी का, सासू का, सब कुछ करके 3 करोड़ कन्याओं को लेके हवाई मार्ग से वो काम में बन गए। यहाँ वृंदावन में लीला हो रही ना नंद बाबा के पास, तो वो तो लीला हो ही रही है। वहाँ से घर जा रहे हैं, लौट के वापस जा रहे हैं, वो सब कुछ चल रहा है। दूसरा जो रूप है उनका, वो 3 करोड़ कन्याओं को लेकर काम्यवन पहुँचता है। वो काम्यवन जो है वो वृंदावन के बाद नंबर 2 प्रिय वन है भगवान का। नंबर 1 जो है टॉप मोस्ट वो वृंदावन धाम है, उसके बाद में काम्यवन भगवान को बड़ा प्रिय है। आज भी काम्यवन बहुत ही रमणीय स्थान है, आप जा सकते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर भगवान ने इन 3 करोड़ अपने अभी बनी हुई कन्या थी, अभी पत्नियाँ बन गई, उनके साथ रास रचाया उन्होंने। और इतना सुंदर रास रचाया, वो भी कैसे रचाया, 3 करोड़ रूप धारण करके हर एक अपनी पत्नी के साथ नृत्य किया उन्होंने। तो उनके शरीर से दिव्य जल निकला, जिसको हम अपने भाषा में पसीना बोलते हैं, लेकिन पसीना तो उसका वर्णन नहीं कर सकते उसको। पसीना को बदबू आती है, पसीना गंदा होता है, पसीना आपको टायर्ड कर देता है, बहुत सारे पसीने के दुर्गुण हैं। लेकिन ये दिव्य स्वेद जल कहते हैं उसको, वो भगवान और उनकी पत्नियों के शरीर से निर्माण हुआ प्रेम के कारण, और आँखों से प्रेम के अश्रु भी बहे और उनका दिव्य स्वेद जल और अश्रु जल एकत्र होकर एक बड़ा सरोवर बना, उसका नाम पड़ा विमल कुंड। जैसे ही वो कुंड बना, उसी समय 84,000 तीर्थ उसमें प्रवेश कर गए। इतने विश्व में तीर्थ है ना, 84,000 तीर्थ हैं। कोई पर सरोवर के रूप में है, कोई पर्वत के रूप में, कोई नदी के रूप में, कोई स्थान के रूप में, कोई वन के रूप में, ऐसे 84,000 तीर्थ उसी क्षण में उस कुंड में प्रवेश कर गए। और भगवान ने तुरंत आशीर्वाद दिया कि जो भी इस कुंड में, विमल कुंड में स्नान करेगा, वो दोबारा इस दुनिया में जन्म नहीं लेगा। जो भी इसका आचमन करेगा, दर्शन करेगा, स्पर्श करेगा, पूरा स्नान करेगा, इसकी याद करेगा, इसका स्मरण भी करेगा, तो उसको कृष्ण प्रेम, मेरा प्रेम प्राप्त होगा, भक्ति प्राप्त होगी और जीवन के अंत में मेरे पास पहुंचेगा वो। तो 3 करोड़ कन्याओं के साथ विवाह तो किया, लेकिन ऐसा कुंड बनाया जो आज भी आप जा सकते हो, उसका स्पर्श कर सकते हो, आचमन कर सकते हो और कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कर सकते हो। भगवान जो भी करते हैं बड़ा अद्भुत करते हैं। और ये काम्यवन जो है वो मैं अभी थोड़ा सा इश्तिहार दे रहा हूँ आपको, एडवर्टाइजमेंट। ऐसा स्थान है कि वहाँ भगवान ने सारे स्थानों को प्रकट किया है, आदि बद्री केदार को प्रकट किया है, यमुनोत्री गंगोत्री को प्रकट किया है, रामेश्वर सेतुबंध और श्रीलंका को प्रकट किया है, गया धाम को प्रकट किया है, परशुराम जी के 9 कुंड वहाँ पर है, पांडवों ने वनवास वहाँ पर किया था, यक्ष का प्रश्न भी उधर ही यक्ष कुंड पे हुआ था, पांडवों का घर भी उस वन में है। कितनी लीलाएं उधर एक वन में। आदि वराह पुराण में वराह देव पृथ्वी को ये सब वर्णन कर रहे हैं, उसमें ये सब वर्णन आता है कि क्या क्या दिव्य स्थान इस वृंदावन धाम में विराजमान है। और काम्यवन का एक चैप्टर है, काम्यवन महात्म्य, उसमें ये सारा वर्णन दिया गया है। काम्यवन में वो एक जगह ऐसी अद्भुत जगह है, ऐसा एक छोटा सा पर्वत है, उसके अंदर थाली बनी हुई है जिसमें भगवान भोजन करते थे, उसका नाम ही भोजन स्थली है। एक कन्या थी राजकन्या, उसने तपस्या किया था और तपस्या के परिणाम स्वरूप भगवान ने दर्शन दिया था उसको, और क्या चाहते हो? मैं एक शिला बनना चाहती हूँ जिसके अंदर थालियाँ होगी और भगवान उसमें बैठ के भोजन करेंगे, ऐसी शिला मैं बनना चाहती हूँ। तो वो इंद्रसेन शिला बनी, वो जो पद्मावती कन्या थी राजकुमारी, और भगवान ने फिर अपने बाल लीला में काम्य वन में जाकर वहाँ पर बैठकर रोज भोजन किया है। इतना सुंदर सुंदर लीला है भगवान की वहाँ पर। तो एनीवेज, हमारे घर में जब विवाह होता है तो भगवान के विवाह की कथा जरूर सुननी चाहिए, इट्स वेरी ऑस्पिशियस। क्योंकि विवाह में तो काफ़ी बाधा भी आती है, कोई प्रॉब्लम भी आता है, टेंशन भी आता है, कुछ बाल भी झड़ जाते हैं टेंशन में, नींद भी उड़ जाती है। हमने भी विवाह किया हमारी कन्या का, रात को 3 से 5 के बीच में हम कॉलोनी में घूमते थे, विचार करते करते क्या करना है कल। नींद ही नहीं आती थी, इतना मन में विचार चलते थे। तो जब भगवान की कथा, बहुत सुंदर कार्यक्रम आपका है, क्योंकि जब हमारे घर में कन्या का विवाह होता है तो उसके उपलक्ष्य में एक सत्संग रखना चाहिए जिसकी कृपा से सारे विवाह के विघ्न जो है वो नष्ट हो जाते हैं, और उसमें भगवान की विवाह की कथा होनी चाहिए ताकि हमें पता चलेगा कि हमारा विवाह तो दुनिया का विवाह है लेकिन भगवान का विवाह कितना दिव्य है। ऐसे दिव्य विवाह की दिव्य कथा सुनेंगे तो सारी जो अशुभता है, जो बाधाएं हैं, वो सब नष्ट हो जाती है और विवाह जो है निर्विघ्न संपन्न हो जाता है और भगवान का आशीर्वाद उसमें प्राप्त हो जाता है। तो आप सबको बधाई हो, और हम भगवान से, राधा गोपीनाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि आपका ये दिव्य कार्यक्रम जो है बड़े प्रेम से हो, आनंद से हो, यशस्वी हो, और आपका कन्या का दंपति जीवन जो है बहुत ही आनंदमय हो, सुखमय हो, निर्विघ्न हो, अच्छी संतान प्राप्त हो जो भगवान के भक्त बने और इनका जीवन सफल हो। और एक विवाह की बात करना भी बहुत ज़रूरी है, वो राधा कृष्ण का विवाह। ये भी सच है कि उनका विवाह नहीं हुआ, और ये भी सच है कि उनका विवाह हुआ, दोनों हो सकता है। भगवान के विषय में टू कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स कैन बी साइमल्टेनियसली एग्जिस्टिंग, अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहते हैं उसको। अचिंत्य यानी इनकंसीवेबल, भेदाभेद मतलब है भी और नहीं भी, बोथ आर एग्जिस्टिंग साइमल्टेनियसली। तो एक तरह से सत्य ये भी है कि उनका विवाह हुआ नहीं, वो ऐसे ही रहे प्रेम करते करते, लेकिन अलग अलग पुराणों में कथा दी गई है कि भगवान के 5 जगह विवाह हुए राधा रानी के साथ में। एक मेन स्थान जो है भांडीर वन, वहाँ पर भगवान का राधा रानी के साथ विवाह हुआ। तो छोटे छोटे बालक थे वो, लेकिन जब वो वन में गए तो 16 साल के युवक बन गए दोनों, किशोर अवस्था में आ गए। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए ब्रह्मा लोक से, सब देवता प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी पुरोहित बने, भट्ट जी बने, और उन्होंने राधा कृष्ण का विवाह किया। तो कृष्ण भगवान ने विवाह करने के बाद पूछा कि क्या दक्षिणा दें आपको। तो ब्रह्मा जी ने कहा हमें आपका युगल जोड़ी का प्रेम दीजिए, भक्ति, चरणों की भक्ति दीजिए। तो भगवान ने वहाँ ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया है कि आप हमारे चरणों की भक्ति प्राप्त करेंगे। उसके बाद भगवान ने बहुत लंबे समय तक विहार किया है गुप्त रूप में, केवल राधा कृष्ण। दुनिया के लिए अभी तक बालक है वो, रेंगते हुए गोद में बैठने वाले बालक है, लेकिन वो 16 साल के बनकर विवाह करके बहुत वनों में उन्होंने विहार किया है, जल में विहार किया है, वनों में विहार किया है, एक दूसरे को छेड़छाड़ किया है, उन्होंने बंसी चोरी है, इन्होंने कुछ चोरा है, उन्होंने कमल चोरा है तो उन्होंने बंसी चोरी है, ऐसा बहुत सारा करके फिर दोबारा भांडीर वन में लौट के आए हैं। तो फिर दोबारा बालक बने, फिर बाबा के गोद में भाग गए कृष्ण, और फिर बाबा उनको घर पे ले गए। तो एक हुआ भांडीर वन, फिर एक हुआ संकेत वन में विवाह हुआ, बरसाने में हुआ, नंदगांव में हुआ, और जावट में भी विवाह हुआ। ऐसे 5 जगह पर विवाह हुआ, और 2 जगह ब्रह्मा जी ने पौरोहित किया उनका, ही बिकेम द प्रीस्ट। तो ये ही समझने के लिए और सुनने के लिए हमारा जीवन है, बाकी जो भी कर रहे हैं वो बाय द वे चल रहा है, बिजनेस है, नौकरी है, घर है, परिवार है, इट्स ऑल राइट, वो करना भी चाहिए और होते रहना चाहिए, लेकिन उसमें हमारा जो है ना, क्या कहते हैं, कर्तव्य रूप में और प्रेम से करना चाहिए, लेकिन हमारा दिल जो है ना वो इनके चरणों में रखना चाहिए हमेशा, क्योंकि दिल इनके चरणों में होगा तो आपके सारे काम वो अच्छी तरह निभाएंगे। आप अपना प्रयत्न करेंगे, अपना कर्तव्य करते रहेंगे, लेकिन यश वो देंगे आपको, दैट इज़ द सीक्रेट। यू डू योर बेस्ट, वट एवर यू कैन डू, लिटिल मोर, बट द सक्सेस ही विल गिव, और वो हमारा विश्वास है, इसलिए हमारा जीवन जो है वो आनंदमय रहता है हमेशा। डोंट वरी, जस्ट प्रे टू हिम एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।